सब जानते हैं कि सत्ययुग में सबसे श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन ऐसे जीवन बनाने का भी पुरुषार्थ हमने इस चोले में किया है। तो ये चोला कर्मों का चोला है, धर्म और कर्म दोनों को हम इसमें रख करके चले तो हमारे सभी कर्म श्रेष्ठ है। तो एक मैं प्रश्न पूछती हूँ कि हमारे इस जीवन के सदा के साथी कौन है, तो आप क्या कहेंगे? बाबा, ब्रह्मा बाबा, कर्म। ठीक ठीक, सदा के साथी माना हर पल, एक क्षण भी हम कर्म बिगड़ रह नहीं सकते हैं। अभी आप चुपचाप में बैठे हुए हो, कई मैं देखते हूँ बिल्कुल चुपचाप में बैठे हुए हैं, परंतु चुपचाप में बैठे हुए भी सभी प्रकार के कर्म चालू है उसके, बरोबर? आंखें खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, आवाज पहुंच रहा है, सांस ले रहे हैं, नाक भी खुला हुआ है, बंद नहीं है, आत्मा विराजमान है। तो सब कर्म इंद्रियां, थोड़ी खिचड़ी दोगे तो हम ऐसे से भी करते हैं, गाना सुनते हैं तो हाथ पांव भी चलते रहते हैं, बैठे बैठे भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर साखी होके देखो, एक सेकंड भी आप कर्म बिगड़ रह नहीं सकते हो। और अंदर ये जो बुद्धि है, ये भी तो ऑर्गन से न, ये भी हमारी यूज होती रहती है। संकल्प शक्ति चलती है, बुद्धि निर्णय करती है, तो ये भी ऑर्गन से यूज तो होते हैं ना, सूक्ष्म और स्थूल दोनों ऑर्गन से हर वक्त चालू ही चालू है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल जब पड़ता रहता है ना, तो मीटर चालू ही चालू होता है, वो निकाल दो तो बात खत्म हो गई। अब जैसे आत्मा के साथ संस्कार सदा ही है, चाहे वो दूसरे चोले में चली जाए तो भी संस्कार आत्मा के साथ है। परम धाम में है आत्मा तो संस्कार है कि नहीं है? नहीं है परम धाम में है, पक्की बात? अशरीरी है तो वह संस्कार है क्या? है, वो कहती है, जो कहते है वो हाथ उठाए, जो कहते नहीं है परम धाम में कोई भी संस्कार नहीं वो हाथ उठाए। संस्कार है, सब लेके जाते हैं, पक्के स्टूडेंट है ये तो, हाँ ये तो पक्के स्टूडेंट है, पढ़ाई अच्छी की है। क्योंकि आत्मा सदा ही, आत्मा संस्कारों के बगैर है ही नहीं। मन बुद्धि संस्कार, ये तीन शक्तियां आत्मा की निजी शक्तियां है, उनके साथ ही रहती हैं। शरीर में है तो परम धाम में है, तो परम धाम में भी हम यहाँ के जो संस्कार बना के जाते वो तो साथ में होंगे ना। किन कर्मों के आधार से तो सत्ययुग में उतरेंगे ना, किन कर्मों के आधार से तो हम नीचे नीचे उतरेंगे ना। संगम युग में भी हम पहुंचे, वो भी कर्म हमारे साथ ही है, गुप्त संस्कारों में था तो भक्ति का फल बाबा ने दे दिया। भले हमने इस जन्म में ऐसी भक्ति नहीं की, ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि ऐसी कोई भक्ति की है इसका फल हमको मिलेगा, ये भी मालूम नहीं था, परंतु हमारे कुछ ऐसे संस्कार थे। बाबा से बेहद का वर्षा पाने के संस्कार थे, इसलिए भक्ति के संस्कार भी छिपे हुए थे। भक्ति का अंतिम जन्म, भक्ति का अंतिम पीरियड, अंदर संस्कार थे, भक्ति का फल बाबा ने दिया। पुराने भक्त थे, नए भक्त नहीं, ताजे भक्त नहीं, एक जन्म के भक्त नहीं थे, आधा कलब के चले हुए भक्त थे। तो भक्ति का फल बाबा ने दिया। फिर जब बाबा के बने तो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान दिया तो ज्ञान से बाबा ने बताया कि बच्चे अब तुम मेरे बच्चे बने हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ज्ञान माना समझ, मैं तुम्हें ऐसी समझ देता हूँ जिस समझ के आधार से तुम अपने कर्मों को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। बाबा ने कर्मों की पहचान दी कि कौन से कर्म राइट है, कौन से कर्म रॉन्ग है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किसको हम पुण्य कर्म कहें और किसको हम पाप कर्म कहें। तो अखबार में कई बार ऐसे लेख आती है, तो पाप की परिभाषा क्या, पुण्य की परिभाषा क्या, परंतु मनुष्य नहीं बता सकते हैं। कोई समझते हैं गौ हत्या ये पाप है, कोई कहते सुअर हत्या ये पाप है, मुसलमान कहेंगे हिंदू रंग है वो पाप करती है, हिंदू कहेंगे मुसलमान पाप कर्म करते हैं क्योंकि वो गौ हत्या करती है, गौ हत्या गौ का वो खाती है। तो हम आपको बताते हैं मनुष्य को पाप और पुण्य का पता ही नहीं है। ये परम पिता परमात्मा जो कर्मों को जानने वाला है, सिखाने वाला है, कर्मों की श्रेष्ठ नॉलेज देने वाला, वो बताता है बच्ची कर्म पुण्य का खाता किसको कहा जाता है और पाप का खाता किसको कहा जाता है। एक शब्द में बाबा ने बहुत ही अच्छा रहस्य बताया है। क्लास पुराना भी लग रहा है, कुछ नए भी होंगे, पुराने उत्तर देंगे तो नए समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये आवे तो पुण्य, जिसको हम पुण्य कहें, तो पुण्य का बीज क्या है, कैसे समझे ये पुण्य का कर्म है, कौन से कर्मों को हम कहें ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य, तो इसकी क्या परिभाषा है। अच्छा, ये कहते हैं जो कार्य परम पिता परमात्मा की याद में किया जाता है, उसकी स्मृति में किया जाता है, वो कर्म हमारा पुण्य का बन जाता है। हाँ, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन जो कराता है ये पुण्य का काम है। दूसरों को कौन सा सुख देना, आत्मिक सुख, रूहानी सुख देना। जिस्मानी सुख में तो आप जानते हो, हाँ उसमें नहीं, वो फर्ज है, संबंध में फर्ज होते हैं, लेकिन रूहानी सुख देना ये पुण्य का खाता माना जाएगा। और मन वचन कर्म से सबको सुख देना, बेहद की वृत्ति रखना, कहीं भी हद की वृत्ति होंगी तो जहां हद होंगी वहां पाप जरूर बनेगा, क्योंकि हदों में क्या होता है, अपना और पराया। अभी आप सब बेहद के भाई हो, कोई इसमें मेरा लौकिक भाई नहीं है, लौकिक भाई के साथ अगर लौकिकता है तो भी हद हो गई, जहां हद है वहां पाप जरूर है, जहां बेहद है वहां पाप नहीं है। जहां बेहद की स्मृति, उचित ऊंची स्मृति में ईश्वर की संतान और ये सब ईश्वर के बच्चे हैं, उनमें जात पात का भेदभाव नहीं रहता है, वो जात पात के भेदभाव की दृष्टि वो हद की दृष्टि है, जहां हद की दृष्टि वहां पाप है। पाप और पुण्य से कैसे हम इसको पहचान करके, पाप पुण्य के खाते को समझ करके हम इससे भी ऊपर वाली लाइन को पकड़ सके, जिससे हमारे पाप नाश होते रहे, शेष कर्म भी होते रहे और हमारे पापों का नाश भी हो। तो एक बहुत अच्छी समझ की बात है कि जैसे हम यहाँ चलते हैं ना, तो किसी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से जितना समय आप देखते हो उतना समय आपका व्यवहार भी उनसे शुद्ध होगा, क्योंकि स्मृति वृत्ति और उसके बाद आपकी कीर्ति। तो जब कर्म आपका श्रेष्ठ है तो बीज उसका अच्छा है, स्मृति रूपी बीज। स्मृति कौन सी, आत्मिक स्मृति। एक बाप के बच्ची है, उचित ऊंचे कुल की है, उस दृष्टि से आप देखेंगे, उसमें टिके हुए होंगे तो आपको किसी का भी भान नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई है। आप जितना बेहद में होंगे उतना आप उनके प्यार के पात्र होंगे, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। दुश्मनी तभी होती है जब थोड़ी दूरी होती है, जब बुद्धि बेहद में चली जाती है तो इन सब बातों से हम छूट जाते हैं। तो हम आपको इस बात पे ध्यान खिंचवाते हैं, एक तो आत्मिक स्मृति में रहना, बाप को याद करते हुए कर्म करना, ब्राह्मण कुल भूषण हूं, ईश्वरी संतान हूं और पुरुषोत्तम संगम युग में खड़ा हूं सिर्फ पुण्य के काम करने के लिए। बस जी रहे हैं किस लिए, अपने खाने पीने के लिए नहीं, अपना मकान दुकान बनाना है, अपने बाल बच्चों की पालना करनी, अभी वो चिंतन बंद हो गया है, तो अभी पूरा करना है, निभाना है। कोई नई रचना रचने के लिए है डायरेक्शन बाबा का, कहते जो रचना रची है ना बिच्छू टिंडरा उनको अभी सुधारो, क्योंकि भूल की तुमने, हाँ अवज्ञा की, विकारों के वशीभूत हुए, अभी तुम्हारे जो भी बच्चे पैदा हुए जैसे भी है, अभी तुम चिड़चिड़ापन से भी उनकी पालना करेंगे तो भी तुम्हारा भी कर्म बनेगा। अब तुम साखी होकर के उनकी पालना करते रहो, अपना विक्रम नहीं बनाओ, और नई रचना रचने के लिए डायरेक्शन ही नहीं है भगवान का, अब फिनिश करो, बहुत तुमने किया अब फिनिश करो, अब जो मैं तुम्हें सिखाता हूं वो सीखो, नई रचना रचने का नया ढंग सिखाया। बच्चे अब ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ, परमात्मा के जो बच्चे सोए हुए हैं उनको जगाओ, उनको पत्र से पावन बनाओ। ये नया धंधा सिखाया, नया कर्म करना सिखलाया कि ज्ञान सुनो और सुनाओ, ये ब्राह्मणों का ऊंचा धंधा है। इनमें पाप नहीं बनता है। बनता है कैसे? ज्ञान सुनने और सुनाने में भी पाप बन जाता है। कैसे? थोड़े सूक्ष्म बुद्धि से, एक तो मन मत पर ज्ञान सुनेगा और दूसरी माया कैसे मिक्स होती है उसमें। ज्ञान सुनाने में भी माया मिक्स होती है। वो कैसे? ज्ञान देने का भी अपमान अंदर रहता है। मैं बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान सुनाती हूँ, मेरा तरीका अच्छा है, सब मेरे से प्रभावित होते हैं। अरे ज्ञान देने वाला दाता, उसने ज्ञान दिया, चीज उसकी है, तुमने सिर्फ दिया, तो देने का भी अपमान। भगवान के ज्ञान का भी महत्व कम करके वो अपना ज्ञान दिखाएंगे, मैं ऐसी समझाने में होशियार हूँ, ये सब मेरे से प्रभावित है। तो ये दे अभिमान आया ना, तो जहां दे अभिमान है वहां पाप है ही है। बहुत सूक्ष्म बात मैं बता देती हूँ, सभी पापों का बाप जो है वो वास्तव में देह भान है। ये जो देह का भान आता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने इसको ऐसा बनाया, मैंने मेहनत करके इसको ऐसा तैयार किया, और ये इधर क्यों चला गया, ये देखो हद की बुद्धि आती है। भगवान का ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बच्चे सबका कल्याण करो, सबको ज्ञान सुनाते रहो। ट्रेन में बैठे हो, कौन तुम्हारे रिश्तेदार है, कौन तुम्हारे पैसे, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे बैठे भी किसी आत्मा की ज्योति जगा दो। लिटरेचर बांटते जाओ, बगीचे में जाते सेवा करते जाओ, शमशान भूमि में जाते हो, मरा कोई और है पर कल्याण तुमको किसी और का करना है। चलने वाला तो चला गया, पर जो आ रही है बेचारी वैराग में है, तो क्यों ना हम उनको भी ज्ञान सुनाए। तो कई बार शमशान भूमि में प्रोग्राम मिलता है, वहां जाकर के बहनें सेवा करती हैं। तो उसमें से मरने वाला मर गया, चला गया, लेकिन जो वहां छोड़ने गए ना उनको ज्ञान मिला। वो फिर सेंटर में आता है कि चलो वो तो ऐसे हाथ खाली चला गया, पर मैं हाथ खाली न जाऊं, कैसे कमाई करूं, बहन जी मुझे बताओ। तो हमारे कई भाइयों ने शमशान भूमि में भी अच्छी अच्छी स्थान चित्र वित्र लगा दिए है कि कम से कम इस स्थान पर मनुष्य को वैराग होता है ना, तो ज्ञान के लिए भी उनको संकल्प आता है कि हम ज्ञान सुने। तो पुण्य काम का तरीका अच्छा है, पर उसमें दे अपमान घुस किया जाता है। कोई सेंटर खोलता है तो उसका भी अपमान आता है, मैंने सेंटर खोला है, अरे मैंने इतना पैसा इकट्ठा करके सारा सेंटर खोला, सारा मैंने ये लगाया वो लगाया, ये सब क्या है? देही अपमान स्टेज है या दे अपमान की स्टेज है, बताओ। चार जिज्ञासों को तैयार करते, सिर्फ चार, तो बाबा एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, चूहे ने एक हल्दी की गरी उठाई गांठ और समझा मैं तो पूरा पसारी बन गया हूं। तो चार आत्माओं को ज्ञान, सारा संसार भरा हुआ है, उनमें तुमने चार आत्माओं को ज्ञान दिया, चार आत्माओं को तुमको अभिमान हो गया, मैंने ज्ञान दिया उनको। अरे उनका अपना पार्ट था ज्ञान लेने का, वो अपना भाग्य लेकर के आए, तू निमित्त बनी, दाता का बच्चा था, भूल गया था, तुमने सिर्फ उसको राह बताई। तुमने क्या कमाल की? कमाल उसके कर्मों की है, भक्ति का फल उनको मिलना था, बाबा के द्वारा मिला, तो उसमें नशे की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये नशा जो है ना देव का भान का, ये हमारे से भी कर्म कराता है। कोई यज्ञ में दान करता है, समझो ज्ञान सर्व में देता है, उसका भी अभिमान उनको आता है। अरे दाता को तुम देते हो या दाता से लेते हो? देते हो या लेते हो? देते हैं अपने लिए, अपने जैसे घर में खर्च करती है तो हम नशा दिखाते हैं क्या? मैं तो बच्चों को खिलाता हूँ, बच्चे कहेंगे तुम खिलाते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो, तुमने पैदा किया, तुम्हारा फर्ज है हमको खिलाना। बच्चे तो सीधे कहेंगे तुमने पैदा ही क्यों किया, तुम्हें ताकत नहीं है तो तुमने ऐसा काम ही क्यों किया, तुम्हारा फर्ज है हमको खिलाना कैसे भी करके। हाँ पीछे बड़े हो जाएंगे तो फिर वो समझ जाते हैं कि अब इनका फर्ज पूरा हुआ। ऐसे बाबा ने ज्ञान दिया, वो दिया ही है देने के लिए, बांटो अच्छी तरह से बांटो। बच्चे देही अभिमान स्थिति में आके बांटो, अगर देही अभिमान स्थिति में नहीं बांटते, देह अभिमान बीच में आ जाता है, तो इसमें फिर हमारा विकर्मों का खाता चालू होता है। देह अहंकार सभी उनका जड़ है, इसलिए बाबा ने शब्द दिया है, देह भान सभी पापों का बाप है। सुख में जाने सब जितने भी पाप होते ना वो देहभान से होते हैं। देहभान से अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। काम उसका भी बुझ देह अभिमान है। देही अभिमानी होगा काम की वासना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस में रहते हैं और सोल को देखता रहता है, तो सोल को देखता है तो उसमें विकार आ नहीं सकता है। इसी युक्ति से ही काम विकारों को जीत सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने यही अनुभव बताया है कि जब तक बच्चे तुम सोल कॉन्शियस में नहीं रहते हो तब तक इस विकार पर तुम्हारी जीत नहीं हो सकती है। इसलिए जीतने के लिए देही अभिमानी स्टेज में रहो, सिर्फ इस निश्चय में पक्के हो मैं आत्मा हूं। तो देह अभिमान से ये काम विकार, फिर क्रोध भी उनसे पैदा होता है। लोभ देखो, लोभ भी किस लिए होता है? अपने पेट के लिए होता है, तो लोभ भी इससे पैदा होता है, मोह भी इससे पैदा होता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब जितने भी विकार हैं उनकी जड़े जो है ना वो इनसे जुड़ी हुई है। जब तक इसको खत्म नहीं किया तब तक कोई भी विकार को हम संपूर्ण खत्म नहीं कर सकते हैं। भले संयम नियम में रहेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, लेकिन संपूर्ण नाश विकारों का इनसे होता है। तब तक सुख में कोई ना कोई प्रकार का पाप बनता ही रहता है। किसी की निंदा थोड़ी सुनी वो भी पाप पापका खाता है, किसी के लिए थोड़ा मुख से बोला वो भी, चलो क्रोध नहीं किया थोड़ी मूड ऑफ की, चलो थोड़ा मूड ऑफ से थोड़े रूखे शब्द बोल दिए, चिड़चिड़ापन आ गया, ये सब है सूक्ष्म सूक्ष्म देह अभिमान के वशीभूत कर्म होते ना, वो दूसरों को फीलिंग में ले आते हैं। कई बार हम बहुत काम करके थक हुए होते अंदर, और ऊपर से एक आया, दूसरा आया, तीसरा, उसने वो बात की, उसने वो बात, तो उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं। तो चिड़चिड़ापन ये देहभान की निशानी है ना, देही अभिमान स्थिति में चिड़चिड़ापन नहीं आता है। तो चलो बहुत गुस्सा नहीं करेंगे, थका हुआ नहीं बोलेंगे, पर थकावट वाली एक्टिविटी हमारी निकल जाएगी। अरे तुमने सिर खपा दिया मेरे से, मैंने बोला ना अभी नहीं, मेरे से बात को पीछे आना, ये चिड़चिड़ापन है, ये भी देहभान का। तो बाबा ने कहा है इस विकारों को जीतने के लिए तुम्हारे को युक्ति तो मैं बताता हूं, यूज करो। जब तक तुमने उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया तब तक थोड़े 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 सूक्ष्म 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 पाप बनते रहते हैं। रॉयल रूप में भी बनते हैं और मोटे रूप में भी बनते हैं। कई ऐसे मोटे रूप हैं जिनका पता भी नहीं लगता है बहुतों को। घर बैठे कई भाई ऐसे गुस्से में आ जाते तो युक्ति युक्त शब्द नहीं निकलता, ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं होती है। ब्राह्मणों की भाषा कितनी ऊंची होनी चाहिए, परंतु ऐसी ऐसी भाषा होती है जो मन में आया ना वो गुस्से में शब्द बोल दिया और बोल करके चला गया दुकान पर। वो तो धन कमाने में लग गया तो चलो मन बिजी हो गया, पर घर वाले को दो शब्द कह करके जो चला गया तो घर वाले बेचारी न खाना पका सकती है न वो खा सकती है, उनको रोना आता रहता है, उसकी मूड ऑफ है, अंदर अंदर संकल्प श्रम भारी। और वो जब आएगा लौट करके कहेंगे ये क्या हुआ है, उसको ध्यान में नहीं है मैंने कुछ ऐसा कर्म किया, मैंने कुछ ऐसा बोला, अटेंशन नहीं है अपने कर्मों के ऊपर, तो एक शब्द भी उसका कितना नुकसान करता है। वो सोच करके वो सो जाती है, बीमार होकर पट्टा बंद करके सो जाती है। फिर जब वो आता है कहते क्या हुआ है, क्या बीमारी है, डॉक्टर को बुलाऊं फलाना करूं, अब बीमारी है वो मानसिक, वो तीर मार करके चला गया दुकान पर, वो तो धन कमाने में लग गया और वो बेचारी चिंतन में लग गई। तो वो जितना समय उनका चिंतन चलता है उतना समय का पापों का बोझ हमारे सिर पर चढ़ता है। मैं सूक्ष्म बात आपको बताती हूं, आप तो चले गए धन कमाने में, चाहे आप चले गए, चाहे माताएं कहीं काम में चली गई पति से लड़ाई झगड़ा करके, परंतु जितना समय उसका वो संकल्प चलता है उसका निमित्त कौन बना, वो बना हा? दोनों फेल हुए ना, देहभान उसमें भी है तो उसमें भी है, परंतु पुरुष को पुरुष पने का जो रहता है ना तो उसको पता नहीं लगता है। उसको ये तो पता लगता है कि इसने मेरे को डांटा, ये किया, वो किया, कोई बात है नहीं, खाम का डांट करके चला गया, और उसको तो पता ही नहीं लगा कि मैंने डांटा भी, क्योंकि आवरण चढ़ गया धन कमाने का, वो आया बहुत बड़े ग्राहक आ गए, पैसा आ गया, बस उसमें पता ही नहीं लगा, परंतु उसका बोझ तो चढ़ा ना। काम तो भले करो पर पता तो लगना चाहिए कि मैंने ये शब्द बोला, तीर लगाया किसी को। ऐसे तो नहीं पता ही नहीं लगे कि कौन से कर्म हुए, हमको पता ही नहीं लगा। न बोलना अच्छा है, पर बोलो तो ऐसा युक्ति युक्त बोलो जो कम से कम वो आत्मा ग्रहण कर सके कि भाई इसको हमने क्या कहा और क्या नहीं कहा। थोड़ा हम यानी चलते चलते कोई बात हो जाए ना, तो कम से कम हमारी महसूसता की शक्ति हो, महसूसता से हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपना भी सुधार कर सकते हैं, दूसरों का, क्योंकि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए ना। पहले तो हम अज्ञानी थे, विकारी थे, तो हमको ही पता नहीं था काम क्या, क्रोध क्या, सारी दुनिया ही उसमें चल रही है। सबको हम देखते हैं, ये भी गुस्सा करता है, वो भी लड़ाई करता है, वो भी झगड़ा करता है, तो हम भी आदि हो गए। अभी हम बीच में आ गए हैं और बाबा ने समझ दिया ये राइट है, ये रंग है, ये सोल कॉन्शियस का आवास नहीं है, ये देह भान का आवास है। अब तुमको कैसे चलना है? देखो आपको अनुभव होगा, मेरे पास तो कई ऐसे मेरे सामने मिसाल है कि भक्ति मार्ग में भी मनुष्य पुण्य का काम भी करता है अपने हिसाब से। पुण्य किसको कहा जाता है वो भी मैं बता दूं। पुण्य का भी काम करते हैं और थोड़ा पाप भी करते हैं। धर्मशाला बनाएंगे कहेंगे पुण्य का काम किया, हॉस्पिटल बनाएंगे कहेंगे पुण्य का काम किया, किसी को दवाइयां फ्री देंगे पुण्य का काम है, कोई बीमार है बेचारा कोई पूछने वाला नहीं जाके सेवा करते ये पुण्य का काम है। हॉस्पिटल बनाना, कॉलेजेस बनाना, धर्मशालाएं बनाना, तीर्थ स्थान बनाना, मंदिर बनाना, फिर दुख थोड़ा लेकर के उसको सुख देना, ये सब पुण्य के काम अभी भी हो रहे हैं, नहीं तो ये संसारी खत्म हो जाए। ऐसे दयावान मनुष्य है जो हॉस्पिटल बनाते हैं, धन है तो बना लेते हैं, धन है तो धर्मशाला बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात करती हैं, धन है तो कुछ कॉलेज बना लेते हैं, नाम लगा देते हैं, फलाना मंदिर, फलाना ये नाम लगा लेते हैं, पर काम कर लेते हैं। अब पुण्य का काम भी किया, पर उस पुण्य के काम से जिस्मानी सुख तो है बहुतों को, पढ़ाई पढ़ करके कोई बैरिस्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसको में कोई रूहानियत नहीं है, आत्मक भाव नहीं है, आत्मा की उन्नति उसमें इतनी है, जिस्मानी सुख है, पढ़ाई की कमाई की तो ये भी तो ठीक है ना। अच्छा धर्मशाला बनिया कोई जाके विश्राम करेगा, उसके मन से दुआ तो निकलेंगी, कोई प्याऊ बनाती है पानी पिलाने का प्रबंध करती है, वो भी तो अंदर से निकलती तो है ना दुआ। परंतु उसके साथ जो दूसरे काम करते है ना मिक्सचर, तो उसमें क्या होता है, गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चोरी करेंगे, ठगियां करेंगे, हेराफेरी करेंगे, और कई किस्म से निंदा करेंगे, किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, किसी को चराने की कोशिश करेंगे, ऐसे जो और कर्म होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह वशीभूत, क्रोध वशीभूत और अहंकार वशीभूत, अहंकार से बोलना, या फिर मोह होता है तो ऐसा मोह फंस जाते जो बात मत पूछो, जिसमें भी मोह पड़ गए, चाहे वो लड़की हो, चाहे अपनी हो, चाहे पराई हो, इतना मोह फंस जाता है कि उसको फंसा के खड़ा रहता है, यार ये भी पाप करो, दूसरी आत्मा को इतना प्यार में फंसा देंगे उनके सेवा वो रह नहीं सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर कर्म होते हैं ना, उनका दंड भी उनको मिक्सचर ही मिलता है। जीवन मनुष्य की होंगी, जीवन बहुत अच्छी, पर उसमें देखेंगे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तन का सुख है तो मन का सुख नहीं है, तन का सुख है, तन बहुत अच्छा, पर मन का सुख नहीं है, अगर मन का सुख है तो तन का सुख नहीं है, धन है पर संबंध का सुख नहीं है, संबंध है तो इधर धर्म नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, समाज के नेताओं के द्वारा अनेक प्रकार के दुख, अच्छा और नहीं तो प्रकृति के आपदाओं के द्वारा दुख, कोई ना कोई दुख लग जाता है। तो हम देखते हैं कोई इंसान है बेचारा आज बहुत अच्छा है, धन है, महल है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन चलते चलते आधा लाइफ में देखो तो दुख के कोई ना कोई पहाड़ गिरते रहते हैं, आज ये हो गया इसका, आज ये हो गया, तो बस चिंतित होकर के, धन सब कुछ है पर वो बेचारा खा नहीं सकता है, नींद कर नहीं सकता है, गोलियां खाता है तब वो नींद करता है, इंजेक्शन लगाता है तब वो नींद करता है, मानो संपूर्ण सुख तो नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब चाहिए, परंतु पुण्य का संपूर्ण खाता नहीं है, तो अच्छा काम भी किया थोड़ा बुरा काम भी किया, मिक्सचर काम करते हैं। मैंने एक बार कभी पहले मिसाल बताया है कि मैं लखनऊ में थी तो एक माता थी, उसका नाम मीरा था और बहुत लगन वाली थी, कृष्ण की अन्य अन्य भक्त थी और उसका पति राधेश्याम, नाम भी अच्छा और काम भी अच्छा, कॉलेज वगैरह सब उसने काफी सारे खोले हुए थे, सोने चांदी का बिजनेस था, कमाई बहुत अच्छी जोरदार थी, नाम था लखनऊ के अंदर। परंतु उनको 7 बच्चे थे, 3 बच्चे अच्छे और 4 बच्चे मिर्गेश, बिल्कुल छोटे, इनका सिर मुंह बड़ा, पांव है नहीं चलने के लिए, अपने पांव पर नहीं चल सकते, पांव इतनी छोटी छोटी है, पेट का हिस्सा बिल्कुल कम, और खा देंगे तो सभी चारों कहेंगे, चारों इकट्ठे आए हैं एक दो के पीछे, 2 बड़े अच्छे हैं, 1 लास्ट बच्ची वो भी अच्छी है, बीच में जो 4 पैदा हुए ना वो चारों ही वंडरफुल। अब माता को इतना दुख कि सारे दिन उसी बच्चों के चिंता में, नाम मीरा है, लगन कृष्ण के साथ है, पक्की भक्ति पक्की है, परंतु धन है तो 4 नौकर रख करके उन चारों बच्चों की सेवा करते हुए भी सदा दुखी रही कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे कौन से कर्म, सिर्फ यही कहती हाय मेरे कौन से कर्म, हाय मेरे कौन से कर्म। अब कोई उसको बताने वाला नहीं तुम्हारे कौन से कर्म ऐसे थे, अब इन कर्मों को कैसे ठीक करो भला, चलो भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाए। फिर उसको ये ज्ञान मिला, तो ज्ञान के बाद उसको थोड़ी समझ मिली कि भाई देखो मेरे मिश्र कर्म है, अच्छे काम भी मैंने इस जीवन में किया, धन है, बड़ी भारी धर्मशाला थी उसने हमको फ्री दे दी थी, तो धर्मशाला भी मिली और माता मीरा थी, भक्तन थी, लगन थी, तो ज्ञान में भी चली, उनको दर्शन भी होने लगे, और राधेश्याम उसका पति नाम था शहर में, तो नौकर रख करके उनकी सेवा की, परंतु माता को अंदर में कीड़ा लगा हुआ था, हाय मैंने कौन से कर्म किए, हमने कहा अभी तुमने किए तो है, वो फल तुम्हारे सामने आ गए हैं, अभी तुम इसका भी चिंतन नहीं करो, इनको ठाकुर समझ करके इनकी शांति से प्रेम से पूजा करती रहो, फिर भी शुक्र करो भगवान ने तुमको धन दिया है, नौकर दिए है जो इनकी पालना कर सकते हैं, तुम सिर्फ परमात्मा को अच्छी तरह से दिल से याद करती रहो और अभी से लेके अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, कोई भी किस्म की बुराई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, और बच्चों को भी अंदर से डांटो नहीं, बच्चे तो बेचारे है ही ऐसे ना, वो तो जरूर ऐसे करेंगे, तुम शांति से प्रेम से साखी होकर अपना पार्ट प्ले करो। कई साल तक उसका पार्ट प्ले हुआ, मैं भी वहां थी लखनऊ में, फिर मैं इधर आ गई तो मेरे को पता लगा पीछे धीरे 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 वो चारों ही बच्चे एक तो के पीछे चलेंगे, परंतु माता को ज्ञान मिला ना, समझ मिली ना, तो शांति से सब्र से अपनी जिंदगी के दिन पूरे किए, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती, कर भी कुछ नहीं सकती, रह भी नहीं सकती, जो आवे उनसे वही दुख, जो आवे उनसे वही। अब उनके मन को ठिकाना मिला, बाबा को याद करो, जिनके मुआफिक पौड़ी चढ़ो और उतरो, ये कर्म तुम्हारे हो चुके हैं, फल आया है, अब मीठा करके भोगो, मीठा करो इसको, कड़वेपन से नहीं देखो, फिर तुम्हारा विक्रम बनेगा। और अब चुप तू करने का टाइम आया है, बाबा ने तुमको ज्ञान माना समझ दिया, तुम हिसाब किताब को चुप तू करती रहो, परंतु तुम चिंतन नहीं करो। तो भले बुजुर्ग माता थी, लेकिन हमने देखा कि पहले जो मन अशांत होता था ना, उसका मन शांति में रहा, और श्री कृष्ण के साथ इसकी लगन इतनी थी जो उनको साक्षात्कार भी बहुत हुए, काफी समय मेरे संपर्क में रही, हिस्ट्री लंबी है, लेकिन मैं आपको बताती, ये हमारे सामने सबूत है, मिक्सचर करो। ऐसी कई बहनें हैं, शादी अच्छे घर में हो गई, पति अच्छा मिला, हर तरह से धन के हिसाब से, अकुल के हिसाब से, शिकल के हिसाब से, घराने के हिसाब से, सब प्रकार से, परंतु चलते चलते ऐसा धक्का लगा, पति मर गया तो उसके जीवन भी बेकार हो गए, मरा वो पर दुखी ये हुई। ये कर्मों के मिक्सचर कर्म, अच्छे कर्म तो सुख पाया, 4 साल पाया, 5 साल पाया, पर वो सुख ऐसा है जिसमें दुख समाया हुआ है, संपूर्ण सुख होता है उसमें दुख नहीं होता है, ये जो विनाशी सुख होता है, पति अच्छा मिला, अकलमंद मिला, धन मिला, दौलत मिला, वो बेचारी सुखी अपने आप को महसूस करती है, पर वो सुख को इंटरनल सुख नहीं है, वो आत्मक सुख नहीं है, उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। जैसे कलयुग में कितना नरक कितना चमत्कारी है, कम थोड़ी चमत्कार है, क्या साइंस के साधन है, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वहां से ही ऐसे क्या कहते हैं उसको, जहां से ऊपर से लेकर के सब यहाँ का फोटो निकाल देते हैं, क्या कहते हैं सैटेलाइट, देखो वहां से क्या फोटो, उधर से ऐसी मशीनें पावरफुल है जो निकाल देते हैं, पेट के अंदर क्या चमड़ी इतनी मोटी लगी पाए तो भी ये फोटो निकल के आता है, क्या क्या बीमारियां अंदर। तो देखो साइंस ने कलयुग में बीमारियां भी बहुत और साइंस ने सुख भी दिया है, ये सब विनाशी सुख। इस विनाशी सुख में दुख है ही है, ये समझ लो। जो अब हम बाबा की याद से जो कर्म करेंगे, ज्ञान और योग को धारण करके, अपने साथ बातें करके, ज्ञान का बीज अच्छी तरह से धारण करके फिर आप कर्म करो। निस्वार्थता से स्वार्थ रख करके सेवा नहीं करो, विनाशी आश रख करके किसी की सेवा नहीं करो। जो आवे उनकी सेवा करो, बाबा का परिचय दो, ज्ञान सुनाओ। तुम्हारे को मान मिले ना मिले, अरे उस बेचारे मेरे को भी जाना चाहिए, वो हाँ भी करती है, हाँ अच्छी बात है, हम आपको भेजेंगे। मान एक में ऐसा मिसाल दूं जो आपको भी थोड़ा लगे, ज्ञान मार्ग में ये बातें होती है। और कहते हैं कि नहीं इस समय तुम नहीं जा सकती हो, तो इच्छा जो उत्पन्न हुई ना, जो उत्पन्न हुई इच्छा, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। बार बार अंदर होगा क्यों फलां जा सकती है, फलां जा सकती है, फलां जा, मैं नहीं जा सकती हूं, तो मेरा मन उदास होगा। अगर हम कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा होंगी, योग युक्त, जहां सेवा वहां मेरे कदम, जो ऊपर की आज्ञा वो मन बाबा की आज्ञा है, यहां बैठे भी मैं वो सेवा कर सकती हूं, जाने से नहीं कर सकती, यहां बैठे भी साइलेंस के बल से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हूं। जो मेरा इस समय पाठ है, मैं साखियों के अपने पाठ को देखूं, कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न न करूं जो इच्छा मेरे मन को दुखी बनावे। तो अच्छा इच्छा उत्पन्न हुई, अच्छी बात है ना, सेवा करने जाएंगे ना, चांस मिला तो ठीक है लियो, अगर न मिले तो ये इच्छा हमको बहुत दुखी बना देंगी। मैंने देखा एक कुमारी को इच्छा उत्पन्न हुई तो मैं फलाने सेंटर पर जाऊं दूर कहीं, मन घूमने का होता है बच्चों के मन में तो, और मैंने हां कर दी। और जब फरमान आया इधर से तो मैंने कहा भाई बाबा का तो इशारा है कि नहीं जाना चाहिए, छोटी स्थान होती है वहां, तीन दिन मैंने बच्चे जाके क्या करेंगे, एक बच्ची जाना चाहिए। और इशारा था तुम ही अकेली जाओ, क्यों तुम किसी को साथ में नहीं जाए, मैंने बताया। तो उसने जो इच्छा रखी थी और मैंने की ना, तो एकदम बीमार हो गई। तो मैं कहा कल तो अच्छी बनी थी, आज क्या हुआ, मेरे को क्या पता ये बीमारियां आ जाती है ऐसे। तो मैं कहा क्या हुआ, उदास उदास सारा दिन सोई रही। तो फिर मेरे को टचिंग, ऐसे तो नहीं मैंने ना किया तब से इसको हुआ है। तो मैंने प्यार से बुला करके मैंने पूछा तुमको क्यों ऐसा फील हुआ, सुबह तो ठीक थी। कहते दीदी आप मेरे से सच्ची बात पूछते हो तो मैं बताती, मेरी बहुत दिल थी चलने की, अब तुमने ना कर दी ना तो मेरे को थोड़ा फील हुआ। मैंने कहा पर तुम ये तो सोचो डायरेक्शन कहां से आया है, तुम भगवान की बच्ची, भगवान के डायरेक्शन पर चल रही हो, श्रीमत पर हमारी जीवन की गाड़ी चल रही है, अब श्रीमत नहीं है तो उसमें कल्याण समझो ना। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा डोस दिया, मैं कहा सब में कल्याण, क्या पता रास्ते चलते तुम्हारा हमारा कुछ हो जाए, भगवान की मत है नहीं जाओ, और तुम कहती मैं जाऊं, ऐसे भी चल नहीं सकती हो, समझो बाबा की मत है, प्रेरणा है नहीं और तुम चलेंगी, तो क्या पता रास्ते में क्या होता है हमारा, ऐसे थोड़ा समझाया। तो समझाते समझाते देखा दो घंटे के बाद ठीक हो गई, नहीं ये कौन सी बीमारी है। तो पता लगा कि ये जो इच्छा हम उत्पन्न करते हैं ना, उस इच्छा को कंट्रोल करना कईयों के वश की बात नहीं होती है। ज्ञान की पावर चाहिए, समझ चाहिए, श्रीमत चाहिए। श्रीमत क्या है, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे, कर्म हमारा श्रेष्ठ जाएगा, उसी में सेवा है, उसी में सफलता है, उसी में हमारी खुशी है। जित बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, आज हम देख रहे हैं, मैं तो प्रैक्टिकल में अपनी आंखों से दो तीन दादियों को देख रही हूं, शरीर में ताकत भी नहीं है, गले खराब है, परंतु सब लोग कहते दादी को आना चाहिए, दादी को आना चाहिए। वो दवाइयां भी कर रही है, साखियों के सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं, परंतु गला खराब है, लेकिन वो समझती है सिर्फ मेरा हाजिर होना भी उन लोगों के लिए सेवा है, मेरे लिए भी एक सेवा है। भाई मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ, 5 मिनट में बोलूंगी, जैसा भी मेरा गला होगा, आप लोग बुलाते हो ठीक है, बाबा की सेवा समझ के मैं आ रही हूँ। तो बाबा को बुद्धि में रख करके काम करो तो कर्म श्रेष्ठ हो गया। अपने इच्छा से वो नहीं जाती है, आज मद्रास में जा रही है, हांगकांग में जा रहा है, इधर जा रहे है, अपनी कोई इच्छा नहीं, न वहां जाके देखती है न घूमती है। अरे इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो कोई घूमने की भी इच्छा हो सकती है ना। जहां जाओ वही भारत में जो सेंटर है, चित्र वही है, बहने भाई वही है, ज्ञान वही है, विदेश में गई तो उनके लिए वही बात है, यहाँ सेंटर वहां सेंटर, भाई बहनों में क्या अंतर है, वो गौरी चमड़ी वाली है ये काली चमड़ी वाली, बस आत्मा वही है, ज्ञान वही है, सेंटर वही है, चित्र वही है, सेवाएं वही है, दृष्टि टोली सबको वही खिलाओ, सब जगह वो दर, तो उनके लिए विदेश है ही नहीं। मैं विदेश में जा रही हूं, अंदर में कोई खुशी हो, मैं फलान जगह जा रही हूं, मैं अमेरिका में जा रही हूं, मैं वहां, नशा ही नहीं है, खुशी नहीं है। मैं यहां से गई तो लंदन के लिए तैयारी करके गई, और कहा था कि अमेरिका के लिए वीजा मिले तो अच्छा है, पर नहीं मिले लास्ट में, तो एक दो दिन पहले पुरुषार्थ किया, मैं तो ऐसे चल रही थी साकी होकर, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या, मेरे को जहां सेवा मिले वहां करके मैं आ जाऊंगी। तो अमेरिका के लास्ट में से वीजा नहीं मिलने वाली थी, जवाब मिल गया नहीं मिले, नहीं मिले तो कौन सी बड़ी बात है, मैं कोई अमेरिका घूमने तो नहीं जा रही हूँ, मैं तो सेवा करने जा, मिलेंगी तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगी तो ओम शांति। मैं गई लंदन में 7 दिन रही, तो अमेरिका से कोई बहन आ गई, वो कहती है मैं आपको लेके जा सकती हूँ और ले जाना जरूर है। मैंने कहा वीजा भारत से तो नहीं मिले, कहती है मैं पुरुषार्थ करती हूँ, उसने पुरुषार्थ किया, 2 घंटे में वीजा मिल गई और सारे अमेरिका का लंबा चौड़ा चक्कर लगा लिया। तो मैं कहा देखो मैं निरसंकल्प थी, परंतु बनी में बना पड़ा था, अनेक आत्माओं की सेवा उसमें होनी थी, जो होनी थी सो हो गई। मैं घूम घाम करके आई तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं, तो मैं कुछ अमेरिका घूम, सब कहे तुम बड़ी भाग्यशाली, मैं कहा भाग्य ऐसे में होता है क्या, भगवान मिल गया उसे बड़ा कौन सा भाग्य, अमेरिका घूम करके ये भाग्य होता है क्या। मैं कहा न मैं अपने को भाग्यशाली इसमें समझती हूँ, भगवान मिल गया बस, सबसे बड़े थे बड़ा भाग्य आपको मिल गया, तो अभी अमेरिका जाऊं तो भी ठीक, नहीं जाऊं तो भी ठीक। फिर अमेरिका के पीछे फिर पता नहीं थी, अफ्रीका का भी प्रोग्राम बनाया तो सहज बन गया भाई, क्लब पहले गई होंगी सो गई हूँ, देखा दर्श बरोबर, क्लब पहले वाला खुल रहा है, यहाँ पहुंच गई हूँ, नैरोबी में पहुंची हूँ, फलान जगह पर क्लब पहले पहुंची थी, वो ड्रामा खुलता जा रहा है, बस जरा भी अंदर में खुशी महसूस नहीं हुई कि देखो मैं कैसी हूँ अमेरिका की। अरे अमेरिका क्या है, बाबा कहते हैं कब्रिस्तान है और बच्चे कहते हैं अमेरिका घूम करके आई, तो हद के बुद्धि में लगेंगे अमेरिका घूमी। मनो बहन तू तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुमको ये मिल गया। मैंने कहा भाई भाग्यशाली भगवान मिल गया, उससे और तो कोई भाग्य है ही नहीं बड़ा, ये तो सेवा का स्थान है। तो वृत्ति से सब बातें बनती है, कर्मों का आधार वृत्ति से है, वृत्ति में ज्ञान भरा हुआ है तो ये बातें हद की असर नहीं करती है, न सुख महसूस होता न दुख। वीजा मिली तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, यहाँ रहे तो भी सेवा है, वहां गए तो भी सेवा है। आगे आती थी फीलिंग, मैं अपना बताती हूँ अनुभव, सेवा का शौक होते ना तो सेवा में जाने में बहुत अच्छा लगता था, जगह जगह नई नई सेवा करूं, अभी उससे बुद्धि ऊपर गई। अरे सेवा हमारी किस में है, पहले उसमें चले जाओ अंदर, सूक्ष्मता में शक्ति भरी हुई होती है ना बाबा की याद, और जो आने वाले जिस स्थान पर मैं बैठी हूं, जो मेरे सामने सेवा आती है वो सेवा करूं दिल से, उस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं का भाग्य बनता है तो अपना बन ही जाता है। याद में मैं आपको बिठाती हूं, पर मैं तो बैठती हूं ना, बैठ करके आपको बिठाते हो तो मेरा तो भाग्य बन जाता है, मेरी बैटरी चार्ज होती है। हम खुशी खुशी से आके कहेंगे जाते हैं योग कराने पर, अंदर है कि मैं खुद करने जाऊं, तरफन होती है, शाम का टाइम होता है, योग करने की तरफन होती है, हम योग जाके करें, करने के साथ चलो सामने बैठे हुए वो भी याद में, मैं भी याद में, उनकी भी कमाई मेरी भी कमाई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त आप जो कर्म करेंगे वो तुम्हारे सुकर्म बनते जाएंगे, पास्ट का चिंतन करेंगे तो विकर्म बनेगा, किसी के अवगुण का चिंतन विकर्म, किसी की बुराई को बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते तुम्हारी बुद्धि गई कहां, अवगुणों में गई, बुराइयों में गई, भगवान की अवज्ञा हो गई। भगवान कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, हम सुनते हैं तो हमारा पाप बनता है, हम सारा दिन पर चिंतन करते देखते रहते हैं फलाना व्यक्ति कैसा, फलाना व्यक्ति कैसा, फलाना कैसा, तो हमारा पर चिंतन पतन की चर्बी हो गई और ईश्वरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। बाबा ने जो काम दिया हम उसमें लगे रहे ना, स्वचिंतन करते रहे ना, तो स्वचिंतन ऑटोमेटिकली उन्नति की सीढ़ी। अपना दर्शन करो, पर का दर्शन बंद कर दो, पर का चिंतन भी बंद तो पर का दर्शन भी बंद, देखते हुए भी जैसे न देखो। ऊपर वाले बैठे हैं, भगवान के बच्चे हैं, श्रीमत सबको मिली हुई है, हम चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ये हमारे विक्रम बनते हैं। तो छोटे छोटे मैं माताओं को भी बताती हूँ कि छोटे छोटे हमारे विकार होते हैं, जैसे ईर्ष्या है, बहुत छोटा सा विकार है, बड़े बड़े विकार तो बड़े हैं, पर ये छोटे से विकार, जिद का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, सहनशीलता की कमी, उसके कारण भी बहुत विक्रम बनते, क्योंकि मन बुद्धि हमारे वश में नहीं रहते हैं। पुरानी संस्कार ऐसे एक शब्द सुना ना, मैं कहती हूँ वंडर लगता है, एक शब्द क्या है, एक कान में आवाज गया फलानी ऐसी, वो शब्द शब्द हो गया, परंतु मैंने सिर्फ ग्रहण किया तो बस मैं मर गई। आपने कोई बुरा शब्द मेरे लिए यूज किया, वो शब्द तो शब्द है ना, शब्द कोई पत्थर तो नहीं है ना, जिबान का एक पत्थर है पर वास्तव में तो पत्थर नहीं है, उसको अगर मैं ग्रहण करते ना, इसने मुझे कहा, मेरी इंसल्ट कर दी, बस मैं फंस गई। फिर वो अंदर संकल्प वो बहुत मेरे को तंग करेगा, वो जो तंग करता है ना उसमें गुस्सा पैदा होता है, और वो उस गुस्से का रूप ऐसा होता है जैसे ना प्रेशर कुकर होता है तो उसके ऊपर होती है सीटी, सीटी के कारण बाफ जो होती है ना वो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जमा होती है। फिर कभी आपने चाकू उठा करके सीटी को थोड़ा ऐसा करेंगे ना, वो ऐसा करेगा वो जो आप ही डर जाएंगे, अगर भूल से सीटी को उतार दिया तो बस आपके चने अंदर पड़े हुए होंगे ना, दाल या कोई तो एकदम छत तक चल जाएगी, वो हालत होती है जो अंदर अंदर ना कहते हैं मैं तो बहुत सहन कर रहा हूँ, बहन जी आपको क्या पता मैं कितना सहन करता हूँ, तो सहन करना माना सीटी ऊपर रखी हुई, अब मुख बंद है। फिर जरा सा कहेंगे ना भाई जी कैसे आप ठीक हो ना, ठीक फिर क्या हूँ ऐसा बोलेगा जब डर जाएंगे, हम कहेंगे क्या हुआ भाई, क्या हुआ आप ऐसे क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, आपको पता ही नहीं लगता है क्या मेरे साथ हो रहा है, कौन मेरे साथ क्या क्या बोलता है आपको पता ही नहीं लगता है। अच्छा भाई पता कौन देगा, तुम ही तो देंगे ना पता, क्या बात है, बात जो है बात लियो दियो ना। तो क्या हुआ, मन भारी रहा, जिसका मन भरा हुआ होगा ना, भरा हुआ होगा, उनको जरा सा ऐसे टच करेंगे ना, बस या इधर से आंसू या मुख से वर्षा, बस दो बातें, या इधर से वर्षा शुरू या इधर से वर्षा शुरू, या तो मूड ऑफ करके वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, बस मैं बीमार हूं। ये मानसिक बीमारियां हैं। अब भगवान हमको मानसिक बीमारी से छुड़ा रहे हैं, न पाप करो ऐसा, न इसका दुख भोगो, इस जन्म में भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, ये संस्कार पक्के हो जाते हैं, जो काम बार बार हम करते रहते ना वो हमारे संस्कार पक्का हो जाते हैं, नहीं हमको इसी जन्म में काटना है इसको, चलो रोना आता है फिर भी कर्म में नहीं ले आना है, मन में आवे तो भी ज्ञान से उड़ा दो, योग करो, मुरली पढ़ो, मनन चिंतन करो, किसी की सेवा करो, तो आपकी माइंड क्लियर हो जाए। एक कुमारी होती थी, बात बात में रोती थी, तो हम उसको सेवा में लगा देते थे, तो जाओ फलाना आया, कहती नहीं पर मेरी मूड ऑफ है ना, मैं क्या सेवा करूंगी, मैं कहा मूड ऑफ करने की दवाई भी तो चाहिए ना, तो ये दवाई है, चलो मैं मूड ऑफ है ना 5 मिनट जरा उससे बात करके आओ, बस जास्ती नहीं, मैं समझती हूँ तुम ठीक हो जाएंगी, अब मैं जबरदस्ती भेज देती हूँ। वो सेवा करके आती है, घंटा सेवा करके आती है, चारा चेंज। मैं कहती ये देखो पहले जब गई थी तब तुम्हारी मूड ऑफ थी, अब क्या हुआ, कहती सेवा की ना तो मैं खुश होके आई हूँ। तो माना मूड ऑफ वाला भी हो ये बीमारी है, संस्कार है हमारे पुराने, अगर तुम सेवा करेंगे, नया श्रेष्ठ काम किया ना, नए श्रेष्ठ कर्म की आपको नई शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई, दान दूसरे को दिया पर रिटर्न आपको मिल गई, दुआ मिल गई, सब कहेंगे बहन जी तुमने हमको बहुत अच्छा समझाया, बहन जी आज एक घंटा में बहुत अशांत था, तुमने इतना अच्छा ज्ञान दिया मेरा मन शांत हो, तो उसकी दुआ मिल गई, दुआ से उनकी बीमारी मन से खत्म हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स रोज यूज करो, ज्ञान योग धारणा सेवा, हर वक्त तुम उस चारों अलंकारों को लेके चलो, ज्ञान है तो यूज करो ना, रिश्तेदारों में यूज करो, कहां भी जाते हो हर कर्म में भी यूज करना पड़ता है, अरे आपका एक क्लास तो आपके घर में है ही है, रोजाना क्लास आपके घर के मेंबर है। आप ये नहीं समझो वो कोई मेरा सेंटर थोड़ी है, कोई गीता पाठशाला मेरी थोड़ी है। गीता पाठशाला में चार बाहर से आते हैं, पर अपनी जो रियल गीता पाठशाला उसमें घर वाले ही बहुत बैठे रहते हैं। आपका व्यवहार ऐसा हो, मैं देखा यहाँ कई माताएं हैं जिनकी सासू कहती हैं कि जब से हमारी ज्ञान में गई है तब से बहन जी हमारा घर स्वर्ग हो गया, उनकी इच्छाएं सब खत्म हो गई, पहनने की खाने की घूमने की भागने की, ये सारा दिन ज्ञान योग आती है, सबकी सेवा करती है प्यार से। मैं बहन जी पहले हमारा घर नर्क था, अब हमारा घर स्वर्ग हो गया, उसने श्रेष्ठ कर्म किया, उनकी सब इच्छाएं अंदर की मर गई। अब उसको है कि मुझे अपनी सास का भी कल्याण करना है, वो भी बाबा के ज्ञान में चले, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, उनको भी थोड़ा मैं ऐसे चलूं जो मेरे बच्चे भी ज्ञान में चले। तो अपने कर्मों के भाषण से उनको तैयार करती है। बार बार कहो ना चलो ज्ञान में, चलो ज्ञान में, तो खिंच जाते, नहीं नहीं तुम्हारे ज्ञान में हम नहीं चलेंगे। हम क्यों बार बार किसी को कहें और बाबा के ज्ञान की वो इंसल्ट करें? कहो नहीं, पर रहो ऐसे, सेवा ऐसी करो, प्यार ऐसा दो जो वो समझे कि ज्ञान रियल है। तो ये इस ज्ञान का सुख हमको लेना चाहिए। बहन जी तुम तो रोज जाती हो, तुम्हारी अवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, हमको क्यों नहीं ले जाती हो? आज हमको भी ले जाओ। ये मनुष्य ने अपने कर्म से सेवा की। कोई बहु सास का रोज ठीक 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 होती रहती थी, पड़ोसियां देखते थे। जब दोनों ज्ञान में चली गई तो दोनों के कारण शांति हो गई। तो पड़ोस वालों ने कहा ये क्या हो गया है, ये कहां जाती है, आगे रोज लड़ाई, अभी लड़ाई का नाम निशान नहीं है, ये क्या हो गया? तो अंदर में उत्कंठा रही। उस युगल ने मेरे से बात की, मैं दिल्ली में गई थी, छोटा सा युगल था, छोटी सी एज वाला, कहा हमको 2 साल हुआ ज्ञान में चलते, पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे थे। तो मैं कहा कैसे आपका आना हुआ, मुझे क्या पता हिस्ट्री क्या उसकी, मैं कहा आपका कैसे आना हुआ? कहा बहन जी पड़ोस में रोज सासू बहू की झगड़े होते थे, हम रोज सुनते थे, हम भी सुन सुन के थक गए थे, हम भी कहते मकान ही चेंज कर दे, यानी खाम का उनकी अशांति हमारे कानों में आती रहती है, हमारी भी संकल्प चलती है। परंतु कुछ समय से ये ज्ञान में चलने लगी तो घर में शांति शांति, आवाज ही नहीं है। तो हमको अंदर आया क्या बात है, क्या बात है, हम जाके देखे कुछ गहरा दुख है या क्या बात है। तो एक दिन कोई बहाना करके हम गए, बहाना करके हमने पूछा तो बहन जी आप कहाँ जाती हो? तो उसने कहा यहाँ सत्संग एक होता है माताओं का, उस सत्संग में मैं जाती हूँ। अच्छा वो कौन सत्संग करता है, कौन सा महात्मा? का महात्मा तो नहीं है, बहनी है। तो ऐसा क्या ज्ञान तुमको मिला है? पहले तो आपका बहुत वातावरण ऐसा था, फिर जो उसने ज्ञान सुनाया तो वो माता रह न सकी, छोटी जवान कहती मेरे को जरूर ले चलो, मेरे को जरूर ले चलो। तो उसने कहा अगर तुम चलना चाहते हो पति को भी साथ में ले लो। फिर दोनों को कोर्स करा, वो दिन और ये दिन ये चल रहे, आज 3-4 साल हो गए हैं। पर दोनों बहुत खुश कहते इनके जीवन से हम प्रभावित हो गया है। नाम बताती है फलानी फलानी, देखो अभी दादी रोज ज्ञान में, ये है कर्मों के श्रेष्ठता का प्रभाव, उन्होंने खुद देखा इनके जीवन में परिवर्तन आए हैं। तो अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली सोचना देखना बोलना और हर कर्म लेना देना सब श्रेष्ठ। क्यों, हम ब्राह्मणों का स्वार्थ तो किसी में है नहीं, जो हम समझे स्वार्थवश जो काम करेगा ना उसमें मनुष्यों को भी खिंचा पड़ेगा कि नहीं इनमें स्वार्थ है तब ये मेरे पीछे पर, इनको कुछ चाहिए हमारे से, ये मदद क्यों करते हैं, इनको कुछ हमारे से भी मदद चाहिए। तो वाइब्रेशन काम करते हैं। देखो ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में निर्भय भाइयों को, वो जो सिंधी एक भाई था जिसने ये मदद किया हॉस्पिटल में, तो उनके हवाटुमल, तो उसका फ्लैट था मुंबई में, उस फ्लैट में कमरा खाली था, उसका एक भाई था या बेटा था मुझे याद नहीं आता, वो बीमार सा रहता था। तो उनको सिर्फ विंद्र के लिए अखबार सुनाए, थोड़ी प्रेम से बात करे, बहुत बड़ा आदमी था पैसे वाला परंतु कर्म भोग भी अपना होता है। तो हमारी पुष्प शांता थी, उनका रिश्ता था बेटी का, वो जमाई लगता था वाटुमल। तो पुष्प शांता को कहा कोई ऐसा कुमार हो जो इस फ्लैट में 3 कमरे 4 कमरे है वहां रहे भी, थोड़ी उसको विंद्र हो जाए बस, और नौकर चाकर बहुत खड़े हैं पर एक प्यार पुचकार देने वाला, चलो कभी चाय का कप उनके साथ बैठ के पिया, कभी कुछ अखबार सुना ली, कभी कोई ऐसी मीठी बात सुना दी, तो आप किसी को भी रख सकते हो। तो हमारे पास उस समय जगह नहीं थी, तो उसके कमरे में निर्भय भाई को रख दिया। निर्भय भाई को रखा तो वो देखते थे कि इतना अच्छा ऑफिसर और यहाँ हमारे पैसे से चाय का एक कप नहीं पीता है। वो कहते वो पीता तुम भी पियो, कहते नहीं हम सेंटर में जा रहे हैं ना, वहां जाके चाय पियेंगे। नहीं तो वो अपने हाथ से चाय का एक कप बना के पीता था। तो भी कर्मों का इतना हिसाब किताब रखता था, जरा भी उसका उसके फ्लैट में अनेक चीजें पड़ी है, अनेक वो जरा भी उसका उसमें वो नहीं था लगा। उस समय का उनके मन में प्रभाव कि ऐसे लोग ही कुछ संसार का काम कर सकते हैं, जिनको अपने खाने पीने की इच्छा नहीं है, पैसे लेने की इच्छा नहीं है, लालच नहीं है, हमारे वैभव देखते हुए भी किसी में लालच नहीं है। तो उन्होंने कहा ये ट्रस्टी जरूर होना चाहिए, हम जो भी पैसा दें इनके मैरफत लगे। तो आज भी निर्भय भाई कहते हैं तो बाबा के नाम पर हॉस्पिटल है, मैं तो निमित्त हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बाबा ने प्रेरणा दी है, बाबा के बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोली, अशोक मेहता निमित्त बन गए हैं, नाम करके ट्रस्ट में हमको लगा दिया है, इधर आता है उधर लगता है, इधर आता है उधर लगता है, मेरा क्या है। क्यों अपना स्वरत नहीं, खाने पीने वाले नहीं, ब्राह्मणों में खाने पीने वाले थे ना, पैसा इधर उधर, डॉक्टर लोग भी हेरा फेरी बहुत कर लेते हैं, और ये दूसरे लोग होते हैं हॉस्पिटल में मिलता तो बहुत है परंतु दवाइयां चोरी हो जाएंगे, फलानी चीजें चोरी हो जाएंगी, बहुत कुछ होता है। अब यहाँ ब्राह्मण क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, निष्काम सेवा का उसकी रिजल्ट निकलती है। ये शिष्ट कर्म है, सिर्फ सुख देने का ही लक्ष्य रखो, कोई भी विकार का अंश न हो, विकार के अंश के वशीभूत काम करेंगे वो हमारा भी कर्म जरूर बनेगा। चेक करते रहो सारा दिन, अब पापों का बोझा उतारना है, शेष काम करना है, और जो किया हुआ है बहुत बड़ी बात है, 21 जन्म क्या 63 जन्मों का खाता हमारी आत्मा में जमा है, भले चुप्त भी करते आए हैं फिर भी है तो सही ना आत्मा में, उसको योग से चुप्त करना है। तो बाबा कहते जितना जितना हो सकता है सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे तो निराकारी स्टेज से तुम्हारे भी कर्म नाश होते रहेंगे। साकार में कर्म किया है ना, साकार देवमान में आके कर्म किया है तो विकर्म बन गए हैं, देवमान में आए हैं तो विकार बने हैं, विकारों से वशीभूतों के काम किया तो विकर्म। अब सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस आत्मा समझ के बाप की सारा दिन नशा चला रहे, कोई बैठ के नहीं घंटा घंटा दो दो घंटा यो करो तो दुकान कौन संभालेगा, आपका बाल बच्चों को कौन संभालेगा। तो भगवान ऐसा काम नहीं करेगा जो आप समझो तो भाई इस काम कोई और करे और मैं सारा दिन योग में बैठा रहूं, नहीं। पापा कहते तुम्हारा निश्चय इतना पक्का हो मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा की संतान, परम जो ये नशा निश्चय पक्का हो, जो कभी भी आप कोई कर्म गलत करो तो आपको फौरन ये नशा खींच के ऊपर ले जाए, हद से बाहर ले जाए ऊपर में, बैठ के योग की इसमें बात नहीं है, निश्चय पक्का हो और निश्चय का नशा रोज रोज चराते रहो, मैं किसका बच्चा हूं, मैं कहां से आया हुआ हूं और मैं इस समय संगम युग में क्यों खड़ा हूं, मुझे ये बताओ, अपने आप से पूछो संगम युग में बाबा ने क्यों हमको खड़ा किया है, क्या कराने चाहते हैं हमसे, संगम युग की ये जीवन किस लिए है, बाल बच्चों के लिए, पोत्रों दोत्रों के लिए, नया मकान बनाएंगे आप लोग, धन इकट्ठा करना है, हाँ? मकान बनाना है, दुकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी, क्या करना है संगम युग में, हाँ बोलो जवाब नहीं देते हो, बाप ने क्या किया संगम युग में, तुमको विश्व कल्याण के लिए सोचना है, बस विश्व का कल्याण कैसे हो उस चिंता के सिवा कोई चिंता नहीं रखनी है, अपनी और विश्व की, अपना स्वयं का कल्याण जल्दी जल्दी करे, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो बेहद की भावना गई ना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, तो आपकी हद तो अपनी है ही नहीं, हदें नुकसान करती हैं, बेहद हमको पार ले जाता है। आज भी हम देखते हैं इतने हमारी भाई बहने हैं तो कुछ आत्माएं हदों में आ जाती है ना, तो जहां हद होती है वहां टक्कर जरूर होगा, जहां बेहद वहां टक्कर है ही नहीं, तुमने काम किया तो भी अच्छा। हमारी बड़ी दादी इतना बड़ा कार्य कर रही है ना, सबकी राय सलाह से करती, अपना है ही नहीं, मेरी राय का मान होना चाहिए, मेरी राय क्यों नहीं मानते, मैं जब कह रही हूं मैं कह रही हूं मेरी बात क्यों नहीं मानते, है ही नहीं, सबसे राय लेंगे, भाई इतना बड़ा काम होने वाला है, अब क्या करना चाहिए, आप सबका क्या विचार है? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है। अब साखियों के बताओ, भाई देवा तुम्हारा क्या विचार है, फलाना तुम्हारा क्या विचार है? 8-10 ने विचार बताया, मैं जा रहा टीकारों को देख करके दादी कहने, हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि सभी विश्व की सेवा के लिए सोच रहे हैं, वेद के बुद्धि से, अपना अपना स्वार्थ किसी का इसमें है नहीं। कॉन्फ्रेंस करे उसका क्या फायदा है, फायदा को बुद्धि में रखे, वेद का संदेश सारी विश्व में पहुंच जाता है। मेहनत है, खर्च भी बहुत है, पर कॉन्फ्रेंस में सारे विश्व में संदेश पहुंच जाता है। करनी चाहिए, 10 जनों ने कहा करनी चाहिए, तो 4 जने सरेंडर हुए पड़े होंगे, कहेंगे बहुत अच्छा। 4 दादी लंबी होंगे ना, कहेंगे 10 का विचार है, इसमें बाबा बैठा हो। 10 आत्मा कहती है कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, कोई बात नहीं। खर्चा बहुत होता है कॉन्फ्रेंस में, मेहनत बहुत होती है, लगातार कितने समय से लेकर मेहनत चलती रहती है। फिर भी दादी कहती है सबकी बुद्धि में एक बात है कि नहीं कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, बस सेकंड में फिनिश। क्योंकि अंदर में किसी का स्वार्थ तो है नहीं है, कोई अपने मान सम्मान के लिए तो कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए तो उसमें क्यों कोई ना करेगा। चलो मेहनत तो करनी पड़ती है, करेंगे। ये मकान बनाते किस लिए, दादी को इसमें आके सोना है क्या? इतने बड़े हाल में दादी को सोना है, दादी को ही विश्राम नहीं, बच्चों की कल्याण के लिए बाबा ने कहा है हमको ये काम कर। ऐसे साखियों के चल रही है, कह भी दिया सबको, आता रहता लगता रहता आता रहता, न खुशी उसको हो रही है न हाथ में मिलता है, तो हाँ मेरे को आज इतना मिला, अपना तो है नहीं ना बैंक बैलेंस। बाबा का कार्य बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है, बाबा की प्रेरणा से बन रहा है। दादी ने एक दिन बहुत अच्छी बात हमको बताई कि ये जमीन का ख्याल ही नहीं था, संकल्प ही नहीं था, क्योंकि फिर भी तो हम साकारियात्मय है, जितना बोझ उठा सकते उतना ही हम सोचेंगे, बाबा तो है ही त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने दादी को कहा बच्ची इस समय तुमको जो भी जमीन मिली ना बहुत बड़ी, जितनी जमीन तुमको मिल सके उतनी तुम ले लेना। दादी ने बाबा का सुना और ध्यान में आया, तो बाबा कहता है बाबा की प्रेरणा है, अच्छा देखेंगे। तो अभी तो साल 2 साल तक हम देखते भी नहीं थे जमीन को, सामने से 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद सामने से एक व्यक्ति आ गया जो हमको दूध देता था। तो उन्होंने मन में था कि ये जमीन है, ये संस्था बढ़ती रहती है, ये जमीन इन्हों के हाथ में चली जाए तो हमारी जमीन है पर अच्छा काम होगा तो उसकी हमको खुशी मिलेगी, तो क्यों ना हम अपनी ऑफर करें। 7 दिन के बाद बाबा ने उनको टच ऐसा किया जो उसने आके हमारे एक भाई से बात की, तो भाई हम समझते हैं हमारे पास काफी सारी जमीन है, इतने एकड़ जमीन है, अगर आप लोगों को जरूरत हो अपने कार्य के लिए, आपका कार्य तो बढ़ रहा है तो हम आपको दे सकते हैं। तो उसने आके दादी से बात की, तो बाबा का आवास और मनुष्य का आवास दोनों मिल गया। तो दादी ने सोचा इसमें कोई राज है, बाबा ने कहा और सामने से ग्राहक आया, इससे पहले नहीं आया था, क्योंकि दादी ले ही नहीं सकती थी इतनी एकड़ जमीन, उसका क्या होगा कैसे होगा दादी सोच भी नहीं सकती थी, पर ऑलमाइटी बाबा ने दिया कि बच्चे बहुत आने वाले हैं, बच्चों के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। अभी दादी ने सबको सिर्फ संकल्प दिया, बस खुद निर्संकल्प होके खा रही है, आराम कर रही है, सब कुछ कर रही है, अरे करण कराना और बाबा है, यज्ञ बाबा का, बच्चे बाबा के सुखी होंगे तो खुद होंगे, जितना करेंगे उतना बना लेंगे। अभी नहीं बन सकता, चलो दूसरे साल में थोड़ा बन जाएगा, कुछ रह जाएगा तो भी दादी को चिंता नहीं। दिव्य बुद्धि से, लौकिक बुद्धि से नहीं, संसार की बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि से फौरन पता लगना चाहिए ये रॉन्ग कर्म है, और उसके ऊपर कंट्रोल हो ज्ञान से, हट से नहीं। और दूसरा फिर बाबा कहते हैं तुम निराकार स्टेज में जितना रहेंगे उतने तुम डबल लाइट हो जाएंगे, आत्मा लाइट, और फिर विकर्म से बच करके रहेंगे, साखियों के कर्म करेंगे, कोई कर्म का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, उससे हमारे विकर्म नाश होते हैं। निराकार स्टेज, सब हाथों से पार, सदा समझो मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं पार्ट बजाने आया हूं, ये मेरे पार्ट के साथी है, ये मेरे सदा के साथी नहीं है, मैं किस में मोह रखूं, किस में लोभ रखूं, क्या मेरे साथ चलने वाला है, पूछो अपने आप से, मर जाएंगे क्या साथ ले जाएंगे, जो बीज बोया वो तो साथ चलेगा, जो श्रेष्ठ काम किया ना वो तुम्हारा साथ जाएगा, बाकी जो स्थूल में है वो तो साथ में जाए, जब शरीर ही नाश हो जाएगा तो हमारा स्थूल तो कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे बेहद के बुद्धि से ज्ञान को यूज करते करते श्रेष्ठ कर्मों का भी पूंजी इकट्ठी करें और निरंतर निराकार स्टेज में रहेंगे तो उससे क्या होता है, आत्मा निराकार स्टेज में रहती ना तो आत्मा की बहुत सूक्ष्म गति होती है, अपने सूक्ष्म संस्कारों को भी वो चेंज कर लेती है। कोई भी हद उसमें नहीं, कोई से लगाव नहीं, कोई से वैर नहीं, कोई से टकराव नहीं, कोई इच्छा नहीं, इनसे आत्मा मुक्त होती रहती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑलमाइटी बाबा के गुणों की शक्ति पड़ जाती है जो उनके विक्रम को नाश करने में पूरी मदद करती है। ये अगर सूक्ष्म सूक्ष्म विकार हमारे अंदर भरे हुए होंगे तो जरूर जब विकार भरा हुआ होगा तो फिर कर्म में खींच के ले आएंगे। अगर हम अपने आप को बेहद बाबा के बच्चे विश्व कल्याण के लिए मैं निमित्त हूं, बस वो भाव पक्का होगा तो आप न किसी के टक्कर में आएंगे न किसी के लगाव में आएंगे। लगाव भी दुख देने वाला है बहुत, और टक्कर भी दुख देने वाला है, और कोई इच्छा उत्पन्न होती है वो भी दुख देती है बहुत। तो बाबा कहते हैं कलयुग में कोई इच्छा न रखो बच्चे, कुछ साथ चलने वाला नहीं, न मकान की न दुकान की न बच्चे की, चलो बच्चे के लिए ऐसी आश रखती है जो बात मत पूछो। तो उसके लिए कहेंगे एक बार तो हम गिर जाए ना, पीछे छूट जाएंगे, अरे क्या पता तुमको वो बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है, होता है तो बच्ची है या बच्चा है वो भी क्या पता तुमको। तो ये आशा पुरानी दुनिया की रखना उनको अंदर दुख देती रहती, भले ज्ञान में भी चलता रहेगा पर आशा है अंदर, भगवान क्या ये फरमान याद नहीं, मौत सामने खड़ा है, बच्चे सब मरे पड़े हैं तुम ऐसे देखो, वो उसके बुद्धि में नहीं है, तो परेशानी होती है बहुत। तो बाबा ने इन सब आशाओं से हमको कहा भी इस अंतिम जन्म में सब आशाओं को पूरा कर दो, खाना पेट है तो दो रोटी चाहिए,